संयुक्त राष्ट्र समाचार के ताज़ा बुलेटिन के साथ मैं हूं महबूब खान। 5 जुलाई 2019 के इस अंक में शामिल हैं। वेनेजुएला में बढ़ते संकट पर मानवाधिकार प्रमुख की पुकार, संवाद ही है एकमात्र रास्ता। लीबिया में प्रवासियों के एक हिरासत केंद्र पर मिसाइल गिरने से अनेक हताहत। जलवायु चुनौती का सामना करने में कैरेबियाई द्वीप देशों का साथ देने की पुकार। भारत के असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में बदलावों पर मानवाधिकार विशेषज्ञों की गंभीर चिंता। भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा स्थिति पर यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट और बेथलहम चर्च संकटग्रस्त विरासत स्थलों की सूची से हुआ बाहर। हम आपको याद दिलाते चलें कि हिंदी में वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाले और ज्यादा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आएं, जहां आपको विविध सामग्री मिलेगी। हमारी वेबसाइट का पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि वेनेजुएला में कायम संकट को दूर करने का एकमात्र रास्ता आपसी संवाद ही है। शुक्रवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए मिशेल बेशलेट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब सरकार को ये तय करना है कि लोगों के मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा जाए या फिर निजी, वैचारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को। यूएन मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों की स्थिति पर गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरकार से देश में मानवाधिकार हनन के मामलों को रोकने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया। मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेशलेट ने उम्मीद जताई कि वेनेजुएला सरकार बड़े पैमाने पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बारे में बातचीत करने के लिए उनके कार्यालय के साथ संपर्क कायम करने के लिए राजी हो सकेगी। मिशेल बेशलेट ने वेनेजुएला सरकार द्वारा हाल ही में 80 बंदियों की रिहाई और संयुक्त राष्ट्र के 2 मानवाधिकार पदाधिकारियों को देश में रहकर अपना काम करने की इजाज़त देने का भी स्वागत किया। मिशेल बेशलेट का कहना था,
There has never been presence in the country. It was only through the regional office, but for many years, for 4 years, 5 years, we didn't have any access at all. So now we're in a completely different situation.
मिशेल बेशलेट कह रही थी कि देश में मानवाधिकार अधिकारियों की कभी मौजूदगी नहीं रही है। ये क्षेत्रीय कार्यालय के प्रयासों की बदौलत संभव हो सका, मगर बहुत वर्षों तक हमें वहाँ कोई पहुँच ही नहीं थी। इसलिए अब हम बिल्कुल अलग स्थिति में हैं। हमारे 2 सहयोगी अब वहाँ स्थायी तौर पर रहेंगे, वहाँ रहकर सिविल सोसाइटी वगैरह के साथ मिलकर काम करेंगे और निगरानी रखेंगे। मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट के शब्द। उन्होंने देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किए जा रहे अत्यधिक और घातक बल प्रयोग का भी जिक्र किया। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने आशा जताई है कि देश में मानवाधिकार के मुद्दों पर सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उन्होंने चिंता भी जाहिर की है कि पिछले कुछ समय में अहम संस्थाओं और कानून के राज का क्षरण हुआ है, जिस वजह से ये काम चुनौतीपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत के असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC में लगातार किए जा रहे बदलावों और लाखों लोगों पर इनसे होने वाले भारी नुकसान की संभावनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। प्रभावित होने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इन अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे नफरत भरे माहौल पर भी गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हेट स्पीच के इस माहौल में असम में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों लोगों पर अलग थलग पड़ने और अस्थिरता व अनिश्चितता का खतरा पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट विशेष रूप से 3 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार की है। इनमें अहमद शहीद धर्म और आस्था की स्वतंत्रता मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिपोर्टर हैं, फर्नैंड डी वेरनेस अल्पसंख्यक मुद्दों पर स्पेशल रिपोर्टर हैं और सुश्री तेंदाई एश्यूम नस्लवाद, जातीय भेदभाव और असहिष्णुता के अन्य व सामयिक रूपों संबंधी मामलों पर स्पेशल रिपोर्टर हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में बदलावों की वजह से देश में नफरत के माहौल को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव भी जोर पकड़ सकता है। जून 2018 में असम में रहने वाले 40 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के संशोधित मसौदे से बाहर कर दिए गए थे। मानवाधिकार विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के देश विहीन हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, या तो उन्हें जबरन देश से निकाला जाएगा या फिर उन्हें लंबी अवधि के लिए बंदी गृहों में रखा जाएगा। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार का आह्वान करते हुए कहा है कि वो असम व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लागू करने के बारे में फिर से सोचे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि NRC को लागू करने के कारण कोई व्यक्ति देश विहीन ना हो जाए, उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव ना हो और उन्हें मनमाने तरीके से उनकी नागरिकता व राष्ट्रीयता से वंचित ना कर दिया जाए, लोगों को बड़े पैमाने पर जबरन उनके स्थानों से ना हटाया जाए और प्रभावित लोगों को मनमाने तरीके से बंदी बनाकर ना रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने, बच्चों और उनके परिवारों की ज़रूरतों के प्रति अच्छी समझ विकसित करने और शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। एजेंडा 2030 के लक्ष्यों, खासतौर पर टिकाऊ विकास लक्ष्य संख्या 4 पर प्रगति के लिए हर एक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के नज़रिए से ये रिपोर्ट काफ़ी अहम मानी जा रही है। दिल्ली से हमारी सहयोगी अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
Raise high this report that I think we can all be proud of and I hope that it's much more important that
भारत में दिव्यांगों की शिक्षा स्थिति के बारे में बुधवार को नई दिल्ली में जारी की गई रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार संबंधी उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस रिपोर्ट में विकलांग बच्चों की शिक्षा के वर्तमान हालात पर रोशनी डालते हुए सरकार के सामने 10 प्रमुख सिफारिशें पेश की गई हैं। भारत में यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट ने कहा,
Around the world, approximately 1 billion people suffer some form of
पूरी दुनिया में आज लगभग 100 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से जूझ रहे हैं। यहाँ भारत में 80 लाख विकलांग बच्चे हैं, जिनमें से अनेक तो स्कूल तक जा नहीं पाते। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भारत में पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम कई अहम सुझाव दे रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रगति हो सके। ये खासतौर पर इसलिए भी आम है क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण पर विचार विमर्श चल रहा है, जिससे सरकार की भविष्य की शिक्षा नीति तय होगी।
भारत में यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट के शब्द। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों में से 3/4 और 5 से 19 वर्ष के 1/4 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या भी बड़ी कक्षाओं में आते आते कम होने लगती है। फिर इन स्कूलों में विकलांग लड़कों की तुलना में विकलांग लड़कियों की संख्या कम ही है। दिल्ली में NCERT के विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के शिक्षा विभाग की प्रमुख डॉक्टर अनीता जुल्का बताती हैं,
1987 में सरकार की भी नीति आई थी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते थे, जिसमें हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे काम कर रहे थे, यानी बच्चों को स्कूल में लाना पर स्कूल को उनके लिए कोई उसमें स्कूल में परिवर्तन नहीं करना। तो बच्चे अगर पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं पढ़ पाए तो वो घर जा सकते हैं या स्कूल में नहीं आने की उनको ज़रूरत। पर अब धीरे धीरे 2000 के बाद सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम जब शुरू किया, तब से समग्र शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि सिस्टम को चेंज होना है, बच्चे को हम चेंज नहीं करेंगे।
विकलांग बच्चों की शिक्षा के बारे में बिखरा हुआ डेटा यूनेस्को की रिपोर्ट के जरिए एक पटल पर इकट्ठा करके इन्हीं दरारों को भरने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट पर काम करने वाली संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विकलांगों के सशक्तिकरण संबंधी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा एम सरंगापानी का कहना था,
कुछ रिकमेंडेशंस जो मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक कि हमें डिसेबिलिटीज़ के साथ भी वो जेंडर लेंस रख के ही डिसेबिलिटीज़ को समझने से हम इसका इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। जो स्टीरियोटाइप्स अभी भी है हमारे समाज में, इस को लेकर भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा।
भारत में समावेशी शिक्षा को लेकर अनेक पहल की गई हैं, जिनमें 2009 का शिक्षा अधिकार विधेयक और 2016 का विकलांगों के अधिकार के लिए पारित विधेयक शामिल है। इससे समावेशी शिक्षा का एक कानूनी ढांचा तैयार करने में मदद तो मिली, लेकिन फिर भी कई सवाल रह गए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग सशक्तिकरण विभाग की सचिव शकुंतला डोले गामलिन ने भरोसा दिलाया कि विकलांगों के हितों के लिए काम जारी रहेगा।
डिसेबिलिटीज इज अ सब्जेक्ट व्हिच वी आर नाउ ड्राइविंग थ्रू।
विकलांगता ऐसा विषय है जिस पर हम 2017 के विकलांगों के अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक के जरिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकारें अपने राज्यों में इन्हें फैलाने, इन्हें लागू करने में लगे हैं। जब मैंने कार्यभार संभाला था तब केवल 3 राज्यों ने इसे नोटिफाई किया था, जबकि अब 19 राज्य इन नियम कानूनों को नोटिफाई कर चुके हैं। क्योंकि ये विधेयक सभी पर लागू होता है, इसलिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। इसके अलावा कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं जिनसे इस अधिनियम को और मजबूती मिली है।
यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की नीतियों के अलावा माता पिता और शिक्षकों का रवैया भी बदलने की बहुत जरूरत है।
दिल्ली से ये थी अंशु शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कैरिबियाई द्वीपीय देशों के सामने जलवायु परिवर्तन की वजह से पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है। सेंट लूसिया में कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम के वार्षिक सम्मेलन में जलवायु संकट पर चिंता जताते हुए उन्होंने विश्व नेताओं से ठोस जलवायु कार्रवाई का खाका तैयार करने की अपील की। सेंट लूसिया में कैरिबियाई देशों के नेता टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में आ रही मुश्किलों पर चर्चा के लिए एकत्र हुए थे। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि सेंट लूसिया की सुंदरता और कैरिबियाई द्वीपों की अप्रतिम आवाजों और जीवन जीने के तरीके पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास की राह में पेश आ रही बाधाएं, नागरिक सुरक्षा और सहनशीलता कायम करने की जरूरत और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना जैसे मुद्दे लघु द्वीपीय विकासशील देशों के सामने चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी पिछले 1.5 दशक में बढ़ी है, लेकिन अन्य सभी श्रमिकों की आय में गिरावट दर्ज की गई है। 189 देशों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित एक नई रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आंकड़े दर्शाते हैं कि 30 करोड़ कामगार हर महीने $7500 कमाते हैं। इसके विपरीत विश्व में करीब आधे यानी लगभग 1.6 अरब कामगारों को प्रतिमाह केवल $200 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। आय के मामले में सबसे निचले पायदान पर खड़े 10% लोगों की मासिक आय सिर्फ $22 है। श्रम संगठन के अर्थशास्त्री रोजर गोमिस का कहना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 10% लोग जितना एक महीने में कमाते हैं वही रकम कमाने के लिए अन्य कामगारों को 28 वर्षों तक काम करना होगा। गरीब देशों में आय असमानता और व्यापक देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने ईसा मसीह की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त बेथलहम चर्च को संकटग्रस्त विरासत स्थलों की विश्व सूची से हटाने की घोषणा की है। एजेंसी ने बताया कि इसका श्रेय फिलिस्तीन के बेथलहम नेटिविटी चर्च को जाता है, जिसने व्यापक सुधार कार्यक्रम के तहत इसकी पूरी मरम्मत कर दी है। बाइबल के ईसा चरित में कहा गया है कि मदर मैरी और जोसेफ की संतान ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में राजा हेरोद के शासनकाल में हुआ था। जन्म की इस कहानी के आधार पर ही ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस मनाया जाता है। विश्व विरासत समिति ने हाल के वर्षों में चर्च की मरम्मत के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए ये निर्णय लिया, जिसमें चर्च की छत, बाहरी दीवारें, रंगीन पत्थरों की कारीगरी यानी मोज़ेक और दरवाज़ों की बहाली का काम शामिल है। विश्व विरासत समिति की अजरबैजान के बाकू शहर में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। महबूब खान को इजाज़त दीजिए। हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलिएगा। पता है news.un.org/hi